نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز سے سب سے زیادہ انسان کو ڈرایا ہے وہ ہے قیامت کا دن، کہ وہ دن انسان کے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا، اور اس دن میں نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل ہوگا بلکہ زمین و آسمان کے لیے بھی وہ دن بہت سخت ہوگا. ان کے لیے یہ دن اٹھانا، اس کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے لیے اپنی تیاری کرو جس دن تمہیں رب کے سامنے اکیلے آ کے حاضر ہونا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زلزلہ تو ساتھ ہی شیئن عظیم، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جیسے ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن حمل والیوں کے حمل کیے جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے مدہوش ہیں، کہ جیسے ان کو کوئی ہوش نہیں، جیسے یہ نشے میں ہوتے ہیں. لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، اصل میں وہ دن ہی بہت سخت ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ بار بار ڈراتے ہیں. اور انسان جو اپنا اعمال نامہ لے کر جائے گا، ہر کوئی ہم میں سے اپنا اپنا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے. ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو تیار کرتے ہیں اور رات تک آج کا دن مکمل کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہماری ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر ہر روز آپ ایک پیج پہ کچھ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا صفحہ پلٹ دیتے ہیں، اور جو پچھلی تاریخ کا تھی وہ ماضی بن جاتی ہے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی. اسی طرح انسان کا اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن یہی اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، کیونکہ تمہیں خود جانتے ہو کہ تم کیا کر کے آئے. اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی انتہائی زیادہ ہوگی. جب ہم حشر کے میدان کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن سورج جو ہوگا سوا نیزے پہ ہوگا. بہت ہم مشہور بچپن سے یہ بات سنتے آتے ہیں کہ سورج بہت قریب ہوگا اور زمین ایسے تپ رہی ہوگی جیسے تانبے کی طرح، اور لوگوں کو صرف دو پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی، اور اس تپتی ہوئی زمین پہ وہ دو پاؤں رکھ کے کھڑے صرف ہو سکیں گے. نہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، نہ لیٹنے کی جگہ، نہ آرام کرنے کا تو دور کی بات ہے. ہر ایک انسان دوسرے کے ساتھ اس طرح جیم پیکڈ ہوگا. آپ کو اس کا اندازہ کبھی شاید حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو اندازہ اس چیز کا اچھی طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ ایسی ہوتا ہے ہجوم، کہ کچھ لوگ صرف اس وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہجوم بہت ہے، کیونکہ اتنی سفوکیشن ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ تو سوچیں تھوڑے چند لاکھ ہوں گے، 30 لاکھ 35 لاکھ اتنے لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن جہاں پہ پوری خلقت ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں پہ موجود ہوگا، تو خود سوچیں کہ وہاں پہ حال کیا ہوگا. تو اسی زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا اور انسان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا، اور ہر انسان اس قدر پسینے میں شرابور ہوگا کہ اس کے پسینے کی جو بدبو ہوگی اور ایسے جیسے کسی مردار کی بدبو ہوتی ہے، اور ہر انسان جو جیسے عمل کر کے لایا ہوگا اتنے ہی پسینے میں وہ ڈوبا ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو پیر تک پسینے میں ہو، کچھ گھٹنوں تک، کچھ پیٹ تک، کچھ کندھوں تک. تو کوئی کئی کا حدیث میں آتا ہے کہ پسینے کی جیسے لگام بھی ہوتی ہے ان کو، ان کی زبان پسینے کی، جیسے اتنی زیادہ ان کو پسینے کے اندر شراب ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا امتحان دنیا کا ہوتا ہے نا، تو ہمارے پسینے نکل آتے ہیں. کسی کو پولیس کو دیکھ لیں، کسی کو سر، تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں انسان کے. اور اس کی ہیبت سوچیں جب انسان اپنے سامنے ایک ایسی چیز دیکھ لے کہ مجھے پوری زندگی کا کچھا کچھا یہاں پہ دینا ہے، تو اس وقت کیسے نہ پسینے چھوٹیں گے انسان. اس وقت میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے जिनको अल्लाह ताला के आर्श का साया नहीं नसीब होगा। और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जैसे सख्त गर्मी हो, सख्त धूप हो, और उस धूप के अंदर आपको सायेदार दरख्त मिल जाए और उस साये के नीचे आप खड़े हों तो कैसी ठंडक महसूस होती है। आप कभी इस पे गौर करिएगा, आपको ये गाड़ी हम चलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई सायेदार दरख्त मिल जाए। यहाँ पे तो खैर इतना नहीं होता, मगर हमारे मुल्कों में क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो सायेदार दरख्त गाड़ी के लिए मिल जाए तो इतनी खुशी होती है, या कहीं पार्किंग साये में मिल जाए तो ऐसी खुशी होती है कि शुक्र है यहाँ पार्किंग मिल जाए। तो कुछ कुछ नसीब ऐसे होंगे जिनको साया मिलेगा, तो उस दिन साये का अंदाज़ा इसकी कितना ज़्यादा वो इंसान के लिए पुरसकून और राहत वाला होगा, इसका अंदाज़ा आप किसी गर्म दोपहर में लगा सकते हैं सर। यहाँ पे आप सूरज के नीचे खड़े हों और वहाँ पे अंदाज़ा करें कि इस वक्त आपने बस स्टॉप पे इंतज़ार करने वालों को देखा होगा, हर कोई साये के नीचे खड़ा होने की कोशिश करता है। और ये तो क्या दुनिया की धूप है ना, और इतनी दूर सूरज है, करोड़ों मील दूर, और कहाँ ये कि सूरज इतनी करीब हो और वहाँ पे आपको साया मिलना हो, और इतने हजूम में जिनको साया मिल जाएगा वो कैसे खुश नसीब लोग होंगे। और उन्हीं की तरफ सब लोग देख रहे होंगे कि ये वो लोग हैं जो ये खुशकिस्मत हैं क्योंकि इनको अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब हुआ है। तो हदीस में हमें पता चलता है कि 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श का साया देंगे। तो आज हम वो देखते हैं कि वो 7 किस्म के लोग कौन से हैं और आया मैं भी उनमें से कहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मैं अपने अंदर को खूबियाँ पैदा करूँ जिससे उस दिन की सख्ती से मैं बच सकूँ, उस दिन मुझे भी साया मिल जाए। सबसे पहला जो हदीस में आता है जिन लोगों को अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा वो है इंसाफ पसंद हुक्मरान। जब हम ये हदीस देखते हैं तो हम सोचते हैं ये तो हुक्मरानों की बात है और ये तो उन लोगों की बात है जो कहीं बादशाह हों या कोई वजीर हों। मैं तो ना बादशाह हूँ ना वजीर हूँ, मेरी क्या इसके अंदर, तो मैं इसके इस कैटेगरी में तुम्हें लाई नहीं करती। हालांकि ऐसा नहीं, इंसाफ पसंद हुक्मरान से मुराद ये है कि हर इंसान जिसके अंडर कुछ लोग हों, चाहे वो कोई माँ है उसके अंडर बच्चे हैं उसका घर है, या कोई आदमी है वो किसी जॉब पे काम करता है उसके अंडर कुछ सबॉर्डिनेट्स उसके हैं जो उसके एम्प्लॉयज हैं, या कहीं पे भी आपके अंडर जो लोग काम करते हैं या जो आपके जेरे दस्त हैं, चाहे वो आपके नौकर हैं या आपकी औलाद है या कोई भी लोग, उनके साथ इंसाफ करना। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान राई है यानी जिम्मेदार है, और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल होगा, जो उसके अंडर लोग हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा उससे। अब हम देखें हमारे अंडर कौन है। सबसे पहले तो हम देख लें कि हमारे घरों में ख्वातीन के लिए तो उनके अंडर उनके बच्चे होते हैं। बच्चों में इंसाफ करना, बेटे और बेटी में फ़र्क ना करना, या एक बच्चा ज़्यादा लाडला है उसको ज़्यादा चीज़ें खरीद के दी, या एक बच्चा ज़्यादा फर्मा बरदार है तो उसको सारी जायदाद दे दी, या हमारे माशरे में तो ये बहुत आम है एक को आग कर दिया दूसरे को जो अपने ज़रा ज़्यादा अच्छी मोहब्बत से पेश आया या जिसने खिदमत की बुढ़ापे में उसको सारा ज़मीन जायदाद और मोहब्बत और सलूक सब उसके साथ किया। इंसाफ, इंसाफ पसंद चाहे वो किसी फील्ड में भी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो कोई बहन है, चाहे वो बेटी है, जहाँ जहाँ पे भी आप हैं इंसाफ से काम लेना, अदल से काम लेना। और स्पेशली मर्दों के लिए भी, जो बाहर जाते हैं और वहाँ पे जिस जगह पे भी वो काम करते हैं वहाँ पे इंसाफ करें, जिसको भी हकूक़ देने हैं उसके अंदर अदल करें। हमने भी जहाँ पे भी हकूक़ अदा करने हैं हम अदल व इंसाफ से काम लें, बराबरी करें। चाहे एक बच्चा आपको ज़्यादा ही लाडला क्यों ना हो, लेकिन उस प्यार करने में तो इंसान का बस में नहीं होता, इंसान का दिल कभी, आप कहते हैं ना कि मुझे छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार है या फलां बच्चा मुझे ज़्यादा पसंद आता है, कोई उसकी फरमाबरदारी की वजह से वो इंसान के दिल के ऊपर उसका ज़ोर नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मामलात में आपका मामला इंसाफ का होना चाहिए, अदल का होना चाहिए। इसी तरह मर्दों के लिए जब वो किसी जगह पे नौकरी करते हैं तो जो भी उनके मुलाजमीन हैं या आपके घर में नौकर हैं इंसाफ करें, जो खुद खाएं वही उसको खिलाएं, जो खुद पहने उसी किस्म का, चलो एग्जैक्ट वो नहीं तो कुछ तो इंसाफ पसंदी करें। ये तो नहीं कि जब मैं मेरे लिए तो कुछ और चीज़ पक रही है तुम्हारे लिए ये पकेगा, जो कल का पड़ा हुआ फ्रिज में वो खाओगे या तुम्हारे लिए दाल है और हम तो ये खाएंगे, کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں کے ساتھ سلوک ہو، غلاموں کے ساتھ، جن کے تو کوئی حقوق ہی نہیں تھے، آپ کے تو ملازمین ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ جو کھانا بناتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ بھی اس کے اندر سے کھائے. ہمارے یہاں کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا وہ بناتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور وہ ہی محروم کر دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. تو عورتوں کے لیے بھی عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. آپ چاہے حکمران نہیں بھی ہیں، آپ ایک گھر کی مالکن ہیں، تو آپ عدل کریں. دوسرے وہ نوجوان جو عبادت گزار ہیں، دیکھیں زندگی کے اندر بہت سے فیز آتے ہیں. آپ کا بچپن بھی ہوتا ہے، پھر آپ کی ٹین ایج ہوتی ہے، جوانی، بھرپور جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ڈاؤن دا ہل ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بالکل بڑھاپا آ جائے. اکثر لوگ بڑھاپے میں جا کے تو اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں کہ اب تو جانے کا ٹائم ہے. سر کچھ لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا آج کے ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اتنی اٹریکشنز ہیں کہ بوڑھے ہو کے بھی لوگوں کو دکھا کہ وہ ٹی وی کے آگے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، فلموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آؤٹنگ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ابھی تک بناؤ سنگھار کے ان کے شوق نہیں ختم ہو رہے. تو بات وہ بری بات نہیں ہے بناؤ سنگھار کرنا، مگر یہ بات ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کا اس وقت تو خیال آ جانا چاہیے، کیونکہ اب تو جانے کا وقت ہے، اب یہاں رہنے کا وقت نہیں ہے. مگر پھر بھی ہوش نہیں آتا. مگر اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ زیادہ پسند ہے جو جوانی میں عبادت کر، جوانی کا عبادت گزار. اس لیے کہ جوانی وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات پوری اس کے اوپر ہوتی ہیں، فل بلوم پہ اتنی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، آگے کے بڑے فیوچر گولز ہوتے ہیں، وہ بڑا مصروف رہتا ہے، ایکٹیو بہت ہوتا ہے، بہت انرجیٹک ہوتا ہے، دل چاہتا ہے یہ کریں یہ کریں. اور وہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو کسی کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوں، مجھے کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، میں تو جو چاہوں کروں. کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، ارادے اس کے آگے کے لیے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. تو ادھیڑوں میں ان میں آ کے تو انسان کمزور ہو ہی جاتا ہے، تو اب گر ہی پڑتا ہے. مگر جوانی میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس کا درجہ ہی بہت بلند ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لوگ ایمان لے کر آئے، ان میں زیادہ تر نوجوان تھے. حضرت ابوبکر صدیق تھے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق تھے، باقی تو سارے نوجوان تھے. آپ مصعب ابن عمیر کو دیکھیں، ان کی مثال کیسی مثال ہے کہ اتنے جوان تھے اور اتنے شوقین مزاج تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا مصعب یہاں سے گزرا. ایسی تیز خوشبو لگاتے تھے اور اتنی قیمتی خوشبو ہوتی تھی، اور لباس بھی اس قدر قیمتی ہوتا تھا، اور کبھی کم درجے کا کپڑا نہیں پہنتے تھے. مگر جب اسلام لے کر آئے تو ایسے اسلام میں داخل ہوئے کہ ہر چیز اللہ کے راستے میں لگا دی. عبادت سے صرف یہ مراد نہیں ہے، نماز روزہ کرنا عبادت کا مطلب ہے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آ جائے. جو جوانی میں آیا، جوانی کا جو اوبیڈینٹ انسان ہے، جوانی میں جس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا اللہ کی رضا کی خاطر، جوانی میں جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، اس کی اطاعت کی، اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور آپ دیکھیں کہ پانچ سوال آخرت میں ہوں گے جن کے بغیر کوئی حشر کے میدان سے ہل نہیں سکتا. جن میں ایک سوال یہ کہ زندگی کیسے گزاری، دوسرا سوال یہ کہ جوانی کس کام میں گزاری، جوانی کو آپ کس طرح گزارتے، آپ کا یوتھ کیسے گزرا. آج بھی کئی لوگ بڑے افسوس سے کہتے ہیں، بڑے درد سے کہتے ہیں، سماتے ہیں کہ کیا کریں، اب آ کے ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اب آ کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے اپنا وہ وقت جو جوانی کا وقت تھا، جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے یا ہم شادی کی ایج کے تھے، وہ ہم نے سارا وقت گزار دیا. اب جو عمل کی باتیں اب پتہ چلتی ہیں، عمل کرنے کا وقت تو وہ تھا، وہ وقت تو سارا گزر چکا، اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ وقت کیسے گزارا. تو اس وقت اتنی حسرت سے کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں اللہ اللہ تعالیٰ ان کا ابھی قبول فرما لے، کہ جو ہے نا وہ جو وقت میں جا کے اس وقت میں پچھتاوا ہوتا ہے نا، جب انسان ساری اپنی عمر گزار آیا ہوتا ہے. کیونکہ آخر کو تو آپ جتنی بھی بھرپور جوانی گزار لیں، مگر آخر کو تو اس چہرے پہ جھڑیاں پڑنی ہی پڑنی ہیں، آخر کو تو اس نظروں نے کمزور ہونا ہی ہے، اور آخر کو تو انسان نے وہ لاٹھی کے سہارے چلنا ہی ہے. ایک عمر وہ آ جاتی ہے کہ اتنا زیادہ بڑھاپا ہو جاتا ہے. مجھے کوئی خاتون بتا رہی تھی، وہ اسی طرح اولڈ ہوم میں کام کرتی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا حال بوڑھوں کا ہوتا ہے کہ قابل رحم ہوتے ہیں، کیسے لگتا ہے کہ موت بھی ان کے لیے رحمت ہے، کہ اللہ بھی ان کو موت ہی آ جائے. ان کے سر ایسے دھلکے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہمیں ویل چیئر پہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں ان کو بال بھی بنوانے کے لیے لے کر، وہ اس کی جاب یہ ہے کہ وہ ان کو بال بنوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کو لے کر جا رہے ہیں، ان کے بال بنائے جا رہے ہیں، ان کو نہیں کچھ پتا. उसके बच्चे पे कर देते हैं कि उसके बाल बनवा देंगे। आखिर हर इंसान जितना मर्जी लंबी उम्र को पहुंच जाए, जितनी मर्जी लंबी उम्र पाले, हमें दुआएं देते हैं ना बड़े कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तो बहुत लंबी उम्र भी जब इंसान को मिल जाती है ना, तो वो भी इंसान के लिए कभी कभी रहमत बन जाती है। इंसान कहता है कि अल्लाह तो मौत ही आ जाए तो बेहतर है, मौत भी रहमत है। तो इसलिए जितनी मर्जी आप लंबी उम्र पालें, जितने मर्जी भरपूर जवानी आप गुजार लें, जितने मर्जी आप अकड़ अकड़ के चलें, जितने मर्जी आप बहुत अपनी जवानी पे नाज करें, लेकिन आखिर को तो इसी अंजाम को पहुंच रहे हैं, या तो कब्र में होंगे और या फिर इस अंजाम को पहुंचोगे। जितने मर्जी आप मास्क लगाएं, मेकअप लगाएं, अपने आप को कितनी मर्जी इन चीजों से अपने आप को करने की कोशिश करें, मगर ये ज्यादा दिन की एक बात नहीं, एक दिन सबका अंजाम देखें, या तो मौत और या रजीली बुढ़ापा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे, अल्लाह ताला उनको ऐसे बुढ़ापे की तरफ मोड़ देता है, वापस पलटा देता है कि दोबारा बच्चे बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं दूसरों के हाथों में वो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है, तो इंसान ऐसा लाचार और मोहताज हो जाता है। तो अल्लाह ताला को तो आपके उस वक्त की नहीं, अभी की चाहिए कि अभी पता चले कि तुम जब इतने नाज और अंदाज के अंदर हो, उस वक्त तुम क्या करते हो, उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन, उस वक्त क्या तुम अल्लाह ताला की इताअत करते हो, क्या उस वक्त अल्लाह ताला का कहना मानते हो। यही तो इम्तिहान है। जब जाने लगे, जब अपने सामने देख रहे हैं अपने जैसों को कब्र में जाते हैं, तो उस वक्त तो सारे ही मान लेंगे, पर अभी तुम क्या करते हो, क्या इस भरपूर जवानी में भी अपने रब को याद रखते। और देखिए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो थे, जवान थे, बूढ़ा यानी मैं आपको जिन सहाबा का बता रही, तो बहुत अपनी जवानी के अंदर ऐसी नमाज पढ़ा करते थे कि खड़े होते थे तो कहते हैं कि ऐसे लगता था कि जैसे कोई लकड़ी गड़ी हुई है, लकड़ी अपनी जगह पे गाड़ दी है, यानी जरा सी भी हरकत नहीं होती, ऐसी नमाज पढ़ते थे। और जब सजदा करते थे तो इतना लंबा करते थे कि चिड़िया आके ऊपर बैठ जाती, तो ये पता नहीं ऐसे कोई पड़ी हुई चीज, ये इन लोगों के हाल थे। फिर एक और सहाबी के बारे में आता है, तो पढ़ रही थी तो बड़ी वो सोच रही थी कि ला हमारी नमाजें क्या हैं, हमारी क्या इबादतें हैं और क्या हमारा खुशू व खुदू है, कि वो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में उनके करीब उनका बच्चा पड़ा हुआ था और एकदम छत से सांप गिरा और उसके ऊपर आके गिर गया। अच्छा, घर वालों में शोर मच गया, उन्होंने पकड़ा, सांप को मारा, बच्चे को उठाया। जब उन्होंने नमाज खत्म की तो कहें कुछ शोर की आवाज आई थी, क्या हुआ था, तो उनकी बीवी ने कहा कि खुदा के बंदे, तुम्हारा बच्चा जो है ना, वो तो इस तरह उसके ऊपर सांप गिर गया था तो तुम अपनी नमाज में लगे हुए। तो फरमाते हैं कि ऐसी नमाज का ही क्या फायदा जिसमें ध्यान ही ना हो, ऐसी नमाज का ही क्या फायदा जिसमें इंसान का ध्यान ही उस तरफ ना हो, तो हमारी नमाजों का क्या हाल है। फिर हम सोचे कि हम अगर अपने आप को कहते हैं हम चलो नमाजी तो हैं, हम तो चलो कुरान तो पढ़ने वाले हैं, अगर अपने अगर हालात को हम देखें तो हम कहीं पे भी नहीं खड़े, और हम किस बात पे नाज करें। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो ये अपने आमालनामे में हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हम किस जगह पे हमारी स्टैंडिंग है, मेरे मार्क्स कितने हैं, आपके कितने हैं और आपके कितने, किसी को नहीं पता। हम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मगर मैं ये नहीं समझ सकती कि मैं आपसे बेहतर हूँ, इसमें तो मुझे तो अभी पता ही नहीं, कैसे पता चला। मैं कहूँ कुछ लोग कुछ कम अमल करते हैं तो सोचते हम तो, एक तकब्बुर आ जाता है कि हम तो पता नहीं इबादत में कितने बढ़ गए, या हम तो पता नहीं इल्म में कितने बढ़ गए। किसने आपको बताया, आपको कैसे मालूम हुआ, अभी तो आपको कोई नतीजा नहीं आया, कोई आपके पास वही आई है कि अल्लाह ताला आपसे राजी है, या आपके पास कोई वही आई है कि आप वहाँ पे बख्श दिए गए हैं। ये तो हमारे छोटे छोटे अमल है, हम इनसे कोशिशें कर रहे हैं, मगर आमाल नामे में कोई हमें अभी पता नहीं है कि हम कितने काम जो है अपनी रियाकारी, अपने दिखावे की वजह से, लोगों को बताने की वजह से, कि आप भी जरा समझ लेना कि मैं बड़ी नेक हूँ, तो मैं इस वजह से नकाब कर रही हूँ, मैं इस वजह से अबाया पहन रही हूँ, मैं इस वजह से क्या पहनी कि ये जरा इनको तो क्या सोचेंगे लोग, अब मुझे नमाज पढ़नी पड़ रही है क्योंकि वैसे तो मैं नहीं पढ़ती, लेकिन अब क्या करूँ कि अब ये लोग सोचेंगे कि ये क्या नमाज नहीं पढ़ती, और अब मुझे लंबी पढ़नी पड़ रही है वरना ये क्या सोचेंगे ये ऐसी नमाज पढ़ती है। हाँ, ये हमारे हालात। जवानी का आगाज करो। हम तो ऐसी ऐसी हमारी इबादतें हैं। तो सुभान अल्लाह, एक बुजुर्ग थे, उनके वक्त में एक बादशाह था, उसने वसीयत की कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी तहज्जुद कजा ना की, जिसकी तहज्जुद कभी ना गई। तो उस वक्त सारी जगह ऐलान किया गया कि कोई है ऐसा जिसकी तहज्जुद कभी कजा ना हो, तो कोई भी नहीं मिला। तो उस वक्त वो क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह, अब ये मेरा और तेरा ये जो मामला था, अब ये सबके सामने खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं हूँ वो जो तहज्जुद पढ़ने वाला था। इतना छुपा के रखते थे, इतने अपने अमल को बचाते थे रियाकारी से। हम जब तक लोगों को पता ना चल जाए, हमें चैन नहीं आता कि लोगों को तो पता ही नहीं चला, अब इसका फायदा क्या, अब मेरी तारीफ कौन करेगा, अब किसी को पता कैसे चलेगा कि मैं नेक हो गई, अब इन सबको बताना जरूरी है। हम बहाने बहाने से कभी बताते हैं, कहते हैं ऐसा रोजा भी ना रखो, ये कहा जाता है ऐसा रोजा भी ना रखो कि जहाँ आपने जाना हो तो फिर आप जाके वहां पे कहो कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आना है तो मैं आप रोजा रख के आ जाऊँ कि अच्छा मेरा तो रोजा है, अब आप समझे कि वही पाकिस्तान कितनी इबादत के साथ तो रोजा भी रखा, इससे बेहतर है उसको तोड़ दो, खत्म कर दो, रियाकारी ना हो किसी अमल में। और शैतान जब इंसान अल्लाह तआला के रास्ते पर चलता है ना, तो सबसे ज्यादा जो वार करता है वो रियाकारी का करता है। इसलिए क्योंकि अगर वो आपको कहेगा चलो चोरी कर लो तो उसको पता ये नहीं करेगा, अगर वो आपको कहेगा चलो हिजाब उतार दो अब उसको पता ये नहीं उतारेगी, अगर वो आपको आप नमाज में पक्की है वो आपको कहता है नमाज छोड़ दो तो उसको पता ये नहीं करेगी। अब क्या किया जाए कि इसका अमल सारा ज़ाया हो जाए, और वो है शो दिखावा, बस लोगों को पता चले, लोग जान जाए, बस ये हो जाए, मेरा नाम ऊपर हो जाए, मेरी वाहवा हो जाए। उसने सारा उसका अमल गारा था, जो अमल किया था इरेज, डिलीटेड, खत्म, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कितने अमल रह गए होंगे अमाल नामे में, कोई रह भी गए होंगे, पता नहीं रहे भी हैं कुछ या नहीं, या सारे ही खत्म हो चुके हैं, सामने ही जानते, कोई भी नहीं कुछ कह सकता। ये तकब्बुर, अकड़, जब इंसान नेकी के रास्ते पर आता है तो शैतान फिर अकड़ डाल देता है, तुम तो बड़े नेक हो गई, अब तो तुम ये भी करने लगी हो, अब तो बड़ी नेक हो गई, अब इससे ज्यादा क्या करना। और इंसान बड़ा मुतमईन हो जाता है कि अब ये छोटे छोटे गुनाह तो मैं कर भी लूँ, अब इतना सा झूठ बोल दिया, इतनी सी चीटिंग कर ली, इतना सा ये कर लिया, तो क्या फर्क पड़ गया, आखिर मैं इतने बड़े बड़े और भी तो काम करती हूँ, तो वो तसल्ली देता है आपको, आप कुछ करने की जरूरत नहीं जाती, और छोटे मोटे कर भी लिए तो कोई बात नहीं, वो तो माफ हो ही जाएंगे, आखिर इतने बड़े बड़े भी तो काम कर रहे हैं। अकड़ आ जाती है, तकब्बुर आ जाते हैं इंसान के, और तकब्बुर से सारे अमल पर सब किया कराया खत्म। क्या हम ये देख सकते हैं कि कितने अमल हैं हमारे जो हमारे तकब्बुर की वजह से ख़त्म हो चुके हैं, नहीं नहीं हम मिट चुके हैं, कितनी नमाजें हैं जो तकब्बुर की वजह से हम गंवा चुके हैं, कितनी तहज्जुदें हैं जो हमने कभी जो पढ़ी होंगी वो भी सारी भूल चुके हैं, कितने रोजे होंगे नफली रोजे जो हमने रखे और वो अब है ही नहीं, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा ना अमालनामे में क्या क्या था जो हम खुद अपने हाथों से जिसको आग लगाते रहे, और क्या है जो बाकी बचते। तो वो तो ऐसे लोग हुआ करते थे कि ऐसे नमाजों में बेहरकत हो जाया करते थे, ऐसा उनका खुशु और खुदू हुआ करता था, ऐसी उनकी इबादत हुआ करती थी। और कि कहीं आता है कि सहाबा थे कुछ ऐसे जिनकी 40 साल की उम्र हो जाती थी तो सब छोड़ छाड़ के इबादत में मसरूफ हो जाते थे कि अब तो जाने का वक्त है। आज 40 साल के अंदर तो लोग वैसे सोचते हैं कि हम अब तो जवानी को पहुंचे, अब तो हमारे पास कुछ आया है कि अब हम कहीं खर्चा कर सके, और अब तो हम स्टेबल हुए, अभी तो हमारे फन करने के दिन आए। तो हजरत आयशा की अगर हम मिसाल देखें, 18 साल की उम्र में वो बेवा हो, और उसके बाद अपनी पूरी जवानी गुजारी देवकी में, और हालत ये थी कि बड़े बड़े सहाबा आते थे इनसे मसले मसाइल पूछने, तो क्या इनकी जवानी की उम्र नहीं थी। आज हम सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे पास सब है, इन्हें 18 साल की उम्र में बेवा हूँ, और देखो और उसके बाद क्या मकाम पाए, और जो सीखा वो इससे पहले का सीखा हुआ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने तालीमात ली, जितनी अहादीस याद रखी, जितना इल्म लिया वो इससे पहले का था, क्या उन्होंने जवानी नहीं गुजारी थी, उनकी जवानी कैसी हुआ करती, پھر ہم دیکھیں کہ انہوں نے پھر کس طرح عبادت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارا۔ پھر تیسرا جو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے گا وہ ہے وہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ اب میں مسجد سے نکلا تو اب کب وہ وقت آئے نماز کا کہ میں واپس مسجد میں جاؤں، کب نماز کا وقت آئے گا، ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ ہے، زمین کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ میں اٹکا رہے گا، وہیں اس کا دل جا کے لگے گا، سوچیں اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کسی آبادی کے اوپر جب اللہ تعالیٰ عذاب کرنے لگتے ہیں تو مسجدوں میں جانے والوں کی وجہ سے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے وہ ہے مسجد، اور جو سب سے اللہ تعالیٰ کو بری جگہ لگتی ہے وہ ہے بازار۔ اس وقت کون سی جگہ زیادہ آباد ہے، بازار یا مسجد؟ ویک ڈیز میں بھی چلے جائیں بازار آباد ہے، لیکن ویک ڈے میں چلے جائیں تو مسجد آباد نہیں ہے۔ بازار کی رونقیں کبھی ختم نہیں ہوتی، رات تک جب تک بازار بند نہیں ہو جاتا، ان کو خود بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو شاید لوگ ساری رات ہی نہ چھوڑیں اس کے بعد۔ لیکن وہ سب سے آباد ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جگہ لگتی، اور جس میں ہم شوق شوق سے جاتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں لینا، بھی تو ونڈو شاپنگ ہی کر لیں گے، چلو کچھ کوئی چیز دیکھ ہی لیں گے، چلو کچھ تو مل جائے گا، اس جگہ میں ہمارا کتنا دل لگتا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی دل ہمارا مسجد میں لگتا ہے؟ جانے کا شوق ہوتا ہے مسجد، یا صرف رمضان کے رمضان ہم جاتے ہیں مسجد؟ اور مرد کیا کرتے ہیں، کیا ان کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد میں؟ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے اندر ایمان ہے اس کا مطلب۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو تین عمل انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ان میں ایک ہے مشقت کے وقت میں وضو کرنا، دوسرا ہے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، اور تیسرا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو جس انسان کو یہ انتظار ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہو گیا، نماز کب ہو رہی ہے، کب اذان ہوگی، اس کا دل اٹکا رہے اس چیز کے اندر کہ اذان کب ہو رہی، ان کو اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ ملے گا اس سے۔ اور جو وہ انسان مسجد سے دور رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ مسجد کے قریب جا کے رہیں، وہ تو قریب والے تو جا ہی سکتا، ہم تو بڑی دور رہتے ہیں، میں تو 10 منٹس میں رہتی ہوں، میں تو پھر 3 منٹ پہ رہتی ہوں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ہر ہر قدم جو آپ مسجد کی طرف بڑھاتے ہیں اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، ہر قدم کے اوپر۔ اسی لیے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم لیا کرتے تھے کہ زیادہ قدم ہو جائے ہمارے۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ وہ مسجد کے قریب موو ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، تمہیں وہاں سے آنے کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو جو دور رہتے ہیں اس کو اجر بھی تو زیادہ مل رہا ہے، اور اگر انسان یہ سوچے کہ ہر قدم کا مجھے اجر ملے گا تو اب سوچے کہ وہ کتنے شوق سے جائے گا قدم قدم کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، نماز کے بعد بھی، نماز اوور بھی ہو رہی ہے، تو فرشتے آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، لیکن فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں وضو سے، وہ پاک مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں تو وہ انسان وہاں پہ بیٹھا رہے، دوسری نماز کا انتظار کر سکتا ہے، اور اس کو جتنی دیر تک وہاں پہ نماز کے انتظار کرنے کے لیے بیٹھا رہے گا، اس وقت تک اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، جیسے وہ نماز میں، جیسے وہ نماز پڑھ رہا۔ مسجد میں بیٹھنا بھی اجر کا باعث، لیکن ہم مسجد سے بھاگنے کا کرتے ہیں، ہاں وہ فلاں کام ہے، فلاں جگہ ہے، اول تو مسجد جانا ہی نہیں، मस्जिदों की रौनक ही खत्म हो चुकी। फजर में कितने नमाजी हैं, ईशा में कितने नमाजी हैं, सिर्फ जुमे के जुमे नमाजी होते हैं। जुमा पढ़ना ऐसा लगता है सिर्फ जुमा पढ़ना फर्ज है, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं कर सकूं तो मैं ये करूं कि नौजवानों को हुक्म दूं कि वो आग लेकर आए, ईंधन लेकर आए, और मैं उन लोगों के घरों को जला दूं जो जमात के साथ नमाज के लिए नहीं आए। क़यामत के दिन जब इन लोगों को कहा जाएगा, अल्लाह ताला अपनी तजल्ली दिखाएंगे, तो सब लोग सजदे में पड़ जाएंगे, सब मुसलमान। वो लोग सजदा नहीं कर सकेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी कमर जो होगी ना वो तख्ता बन जाएगी, झुक नहीं सकेगी उनकी कमर, और बड़े शर्मिंदा होंगे, जिल्लत होगी उनके चेहरों पे कि हाय आज सारे सजदा कर रहे हैं और मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझसे सजदा नहीं किया जा रहा। उनसे कहा जाएगा कि जब दुनिया में तुम्हें सजदा करने का कहा गया तुमने उस वक्त सजदा नहीं किया, आज तुम सजदा नहीं कर पाओगे। और देखो इन्हीं निशानों से, ये जो वजू के सजदे के निशानों से ही तो ये उम्मत पहचानी जाएगी, ये तो हमारा जेवर है, लेकिन हम नमाजों से भागते। कहते शुक्र ही है कि अब आजकल नापाकी है तो नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ रही है, छुट्टी हो गई नमाज, अब इसको डिले ही करते जाओ तो अर्श का साया कैसे मिलेगा। अगर नमाजों के बाद नमाज का इंतजार ही नहीं है तो फिर इंसान को अजर कैसे मिलेगा, साया कैसे मिलेगा अर्श का। तो याद रखें, कोई भी काम, कोई भी अमल मामूली ना समझे, ये छोटी बात नहीं है। हर एक छोटी छोटी हम इंशाल्लाह ताला नेकियों को भी, जिसको हम मामूली भी समझते हैं, उनको भी अगर हम जमा करेंगे ना, अब बच्चों में इंसाफ करना या फिर जवानी में इबादत करना या मस्जिद में अपने दिल को अटकाए रखना, आपके लिए शायद मामूली बात हो, लेकिन इनको मामूली ना समझो। ये वो अमल है जो अल्लाह ताला के अर्श का साया दिलाएंगे, और वैसे तो इंसान को किसी नेकी को भी नहीं हकीर समझना, कोई भी नेकी ऐसी नहीं है कि जिसको इंसान सोचे कि नहीं ये ना भी की, ये छोड़ भी दी तो कोई बात नहीं, अब मैंने इनको राइट देनी है तो मैं कहूँ चलो छोड़ो क्या जरूरत है इसको पूछने की, ना भी पूछा तो क्या हर्ज हो जाएगा, क्या कमी रह जाएगी। नहीं, नेकियों के हरीस बने, भागे, दौड़ लगाओ एक दूसरे से। अल्लाह ताला कुराने पाक में क्या फरमाता है, सबकत ले जाओ, कंपटीशन करो एक दूसरे से। किस में कंपटीशन करो, नेकियों को करने में, कि ये भाग रही है मैं भी भाग, मैंने इनसे आगे निकलना है, मैंने उससे आगे निकलना है, मैंने उससे आगे निकलना। ऐसे हमारे दरमियान कंपटीशन होना चाहिए, ऐसे मुकाबला होना चाहिए। ये नहीं कि एक के बाद एक को छोड़े रखें कि अच्छा चलो नहीं भी किया तो कौन सी ऐसी बात, हमारे पर फर्ज थोड़ी है, फर्ज तो कोई भी नहीं, फर्ज तो यही जो अल्लाह ताला ने फर्ज दिया वही फराइज है। मगर उसी नेकी को हकीर ना समझो। देखिए एक आदमी बड़ा इबादत गुजार था, बहुत रोजे नमाजी और सब, तो एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज थी, जो कोई एक दरख्त की शाख पड़ी हुई थी, जो उसने सोचा कि ये जब कोई यहाँ से गुजरेगा तो उसको तकलीफ होगी, रास्ते में पड़ी होगी, तो उसने उसको हटा दिया। जब उसने उसको वहां से हटाया तो उस वक्त के जो पैगंबर थे उन्होंने उनके पास जब वो गया तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बख्शिश की है इस वजह से कि तुमने इसको रास्ते से हटाया, इस तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाया, इस वजह से तुम्हारी बख्शिश हुई है, इस वजह से तुम्हारे गुनाह धुले। वो इस वजह से नहीं, वो जो नमाजें पढ़ रहा था, रोजे रखा था, वो एक अलग, मगर उसकी बख्शिश देखो किस वजह से हुई। तो आपको ये नहीं पता, किसी चीज को हकीर ना समझो, किसी चीज को हकीर ना समझो, किसी नेकी को हकीर ना समझो। जैसे एक इंसान एक जन्नत के दर्जे पे होगा ना, तो वो ऊपर देखेगा उसको किसी और का बाग नजर आएगा, और नजर आएगा कि वो कोई और आदमी है, बड़ी उनकी जगह पे है और वो उसकी जन्नत है। तो वो पूछना कि ये फला आदमी इसको इतना ऊपर का दर्जा कैसे मिला, तो उसको कहा जाएगा उसने एक सुभान अल्लाह तुमसे ज्यादा पढ़ी, एक सुभान अल्लाह तुमसे ज्यादा पढ़ी, उसका दर्जा तो उसे एक ऊपर है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले ये ना समझे हम सब एक जगह पे ही होंगे, हम सब ही तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम सब नमाज पढ़ने वाले हैं, हम सब हिजाब लेने वाले हैं, हम सब सच बोलने वाले, तो हम सारे इकट्ठे ही होंगे, सारे ऐसे ही चले जाएंगे भीड़ चाल। नहीं नहीं नहीं, हम सब के एक एक अमल का, एक एक नियत का हिसाब होगा कि आप पता नहीं कहाँ होंगी, आप कहाँ होंगी, मैं कहाँ होंगी, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, इसके ऊपर दर्जे मिलेंगे। दर्जे ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे जैसे आपका मतलब मजमू देखा जाए कि हाँ बस क्योंकि लमसम इसका ये इतना, नहीं नहीं, एक एक नेकी को देखा जाएगा, किसी नेकी को हकीर ना समझो, किसी को भी नहीं। एक रास्ते से चीज हटाना जिससे ये आपको कोई जाएगा यहाँ पे ये छिलका पड़ा रहा, कोई फिसल ना जाए, क्या पता इसकी वजह से आपकी बख्शिश हो जाए, या पता अल्लाह ताला को ये पसंद आ जाए। तो हर नेकी करने से ये सोच के किया करो, क्या पता मेरे रब को यही चीज पसंद आ जाए, मुझे पता इसी को वो कबूल कर ले। तो जब आप ये सोच के करेंगे ना, कोई चीज आपको कोई नेकी हकीर लगेगी, आपका दिल करेगा हर एक कोई मौका में हाथ से जाने ना, किसी को मुस्कुरा के देखना भी आपको हकीर नहीं लगेगा, वो भी तो सदका है, वो भी आपको हकीर नहीं लगेगा। कोई मशवरा मांगता है तो आपने उसको अच्छा मशवरा दे दिया, वो भी तो नेकी थी, आपको वो हकीर नहीं लगेगी। क्योंकि तो आपको ये होगा, क्या पता जब नेकियां और बदियां डुल रही हो तो यही नेकी मेरी एक काम आ जाए। फिर अगला नंबर चार, वो इंसान अल्लाह ताला के अर्श का साया पाएगा जो अल्लाह की खातिर दूसरे से मोहब्बत करने वाले, सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये नहीं कि आप मेरे शहर से ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान में मैं भी कराची से हूँ तो आप भी हैं तो इसलिए आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, या फिर आप मेरी वाली जुबान बोलती हैं इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, या आप मेरे मुल्क से हैं तो इसलिए मुझे बड़ी पसंद है, या आप मेरी जात बरादरी की है तो इसलिए मेरा आपके साथ बहुत ज्यादा बनती है आपके साथ। नहीं, उनके लिए क्या है, सिर्फ मैं अल्लाह की खातिर से मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत क्या होती है? अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत क्या होती है कि जिसमें कोई गर्ज ना हो, कोई मफाद ना हो, कोई अपना यानी आपका फायदा ना हो, कोई और ताल्लुक नहीं, सिर्फ क्या चीज आपको इसकी दोस्त बनाती है, इससे मोहब्बत करने पे उभारती है, वो है अल्लाह ताला की जात। मैं अल्लाह की खातिर, ये अल्लाह ताला ने मसलन आपको किसी से मोहब्बत है इस वजह से कि मिसाल के तौर पे वो आपके साथ कुरान पढ़ती है एक क्लास में, ये क्या मोहब्बत है अल्लाह की खातिर। या आप किसी के साथ बैठती हैं तो आप जब भी उसके साथ बैठती हैं कोई नेकी की बात करती हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो अब ये मोहब्बत कौन सी, ये अल्लाह की खातिर। अब आप उनका उसके में भी वो आपके जात बरादरी से हो, आपकी करीबी हो, जरूरी नहीं कि उन लोगों के साथ आपने दोस्ती नहीं करनी, बात क्या है कि गर्ज क्या होनी चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, क्या कि इसके साथ जो मेरी दोस्ती है सिर्फ वो इसलिए है कि मैं इसके जरिए से, इस दोस्ती के जरिए से भी अल्लाह को राजी करूँ। तो क्यामत के दिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो नबी नहीं होंगे, शुहदा नहीं होंगे, सिद्दीकीन नहीं होंगे, लेकिन उनके दर्जे इतने ऊपर होंगे कि लोग देख देख के राज कर रहे होंगे कि कौन लोग हैं, जिनको नूर के मिंबर मिले होंगे और उनके चेहरे इस कदर नूरानी होंगे, रोशन चमक रहे होंगे, तो सारे लोग इस बहुत उसमें होंगे ना कि देखिए कि कौन लोग हैं जिनको इतना कुछ ऐसा चेहरा मिला था और ऐसे नूर के मिंबर मिले हैं, कौन लोग हैं, इनका क्या अमल था। तो उनको बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो बगैर किसी रिश्ते के, कोई रिश्ता नहीं था इनका, या माली लेन देन के, कोई ये बिजनेस पार्टनर नहीं थे, कोई मुझे आपसे फायदा नहीं था कि अच्छा अब आज मैं इनका इनके कुछ काम आती हूँ तो कल देखो अगर मैं बीमार हूँगी तो ये भी तो मेरे लिए कुछ बना के लेकर आएंगी, ये भी तो मेरे कोई काम आ जाएंगी, या देखो ताल्लुकात बना के रखने चाहिए, आखिर इस मुल्क के अंदर हम रहते हैं अकेले थे तो आज मैं इससे काम आऊँ कल ये, वो ऐसा कुछ नहीं था। इनका सिरा ताल्लुक किस लिए था कि एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह ताला की खातिर करते, अल्लाह की खातिर से मोहब्बत करते, आज मैं इसके लिए कुछ कर भी रही हूँ तो अल्लाह की खातिर कर रही हूँ, मेरा जो आपस में लेन देन है इसके साथ वो भी अल्लाह की खातिर है, ताल्लुकात है वो अल्लाह की खातिर है। उनको इतने बड़े दर्जे मिलेंगे कि चेहरे उनके नूरानी होंगे और नूर के मिंबरों पे उनको बिठाया जाएगा उस मैदान में, अभी जन्नत में नहीं पहुंचे, सब लोग उनको काबिल रश्क नजरों से देख रहे हैं। तो अगर किसी से अल्लाह की खातिर मोहब्बत की जाए ना तो उसका अजर भी मिलता है, ये वो मोहब्बत है जिसके ऊपर आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने कहा कि वो फलां बंदा है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने उसको बताया, उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अगर तुम अल्लाह की खातिर से मोहब्बत करते हो तो जाओ उसको बताओ। तो जब वो गया और उसने जाके बताया तो उसने जवाब दिया, अगर आपको भी कोई कहे कि मुझे अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत है तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, और एक दूसरे को बताना भी चाहिए कि मुझे अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत है, जब आपको किससे मोहब्बत हो तो उसको बताएं, दिल में नहीं रखें। तो उसने जवाब दिया, उहिब्बुका उहिब्बुकल्लज़ी अहबबतनी लहू, तुझसे वो ज़ात भी मोहब्बत करे जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। यानी अल्लाह ताला भी अल्लाह की खातिर तुम मुझसे मोहब्बत करे ना, तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करे इस वजह से कि जो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उस ज़ात की वजह से करे तो वो ज़ात भी तुमसे मोहब्बत करे। तो जब भी किससे मोहब्बत करें तो उसके बताए जाते, और जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह की खातिर मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की खातिर किसी के ऊपर गुस्सा करो, अल्लाह की खातिर लो, अल्लाह की खातिर दो। मगर हमारी हर चीज में दुनिया की गर्ज आ जाती है ना, कि मैं इस गर्ज से इसके लिए करती हूँ, ये बड़े अमीर लोग हैं इसलिए इनके साथ ताल्लुक बनाएंगे, तो शायद हम भी पता नहीं शायद। हालांकि आप देखें जितना कोई ज्यादा अमीर कबीर होता है उतने उनके दिल, आप में से कोई हो तो मुझे माफ करिएगा, तो उतने उनके दिल बहुत तंग होते हैं। आप देखेंगे कि जितने इंसान के पास कम होता है उसका दिल खुला होता है ज्यादा, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ भी हो और उनका दिल खुला भी हो, ज्यादातर के दिल तो ऐसे बंद हो जाते हैं। तो लोग उनके साथ ताल्लुकात रखने में ना बहुत फख्र महसूस करते हैं, ऐसे जैसे कि इन्होंने हमें भी कुछ दे देना, हालांकि वो देते कुछ नहीं, बस वो इसी पर फख्र करते रहते हैं हमारे इतने ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात। ये अल्लाह की खातिर मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की खातिर दोस्ती नहीं है, हा? ये दोस्तियां क़यामत के दिन क्या हो जाएंगी, दुश्मनियों में बदल जाएंगी। तो वो कहेगा इसने, लोग ऐसे दोस्तों से भागेंगे ना, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनी, हर एक से लोग भागेंगे, अपने रिश्तेदारों से, सकों से भागेंगे, दोस्तों से भागेंगे, क्योंकि सारे वो दोस्तियां जो है वो नफरतों में बदल जाएंगी। इंसान कहेगा देखो इसने खुद तो बड़ी अल्लाह अल्लाह करती थी, मुझे तो इसने कभी नहीं बताया, मुझे तो आगे कुछ नहीं बताती, मुझे तो ये इस रास्ते की तरफ नहीं लेकर आई, मैं तो इसकी कंपनी में बैठती थी, इसने मुझे कभी अल्लाह ताला की याद नहीं दिलाई, कभी मैंने कोई ज्यादती की, इसने मुझे रोका नहीं, तो वो तो दुश्मन बन जाएंगे। मगर अल्लाह की खातिर दोस्ती कैसी होती है कि जब आप उस इंसान के साथ बैठे, इसकी निशानी है, जब आप उस इंसान के साथ बैठे अल्लाह ताला की याद ताजा होती है, नेकी की तरफ आपका शौक बढ़े, बुराई से आप पीछे हो जाए, या आपको किसी और कोई ऐसा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का काम है वो आपको इसकी तरफ मायल करे, तो समझ लेंगे अल्लाह की खातिर दोस्ती है। लेकिन अगर हर वक्त उसके अंदर दुनियादारी है तो वो अल्लाह की खातिर तो दोस्ती नहीं है, वो तो फिर दुनिया की खातिर ही हुई। जिस दोस्त के साथ बैठ के आप सिर्फ दुनिया की गपशप करते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं, टाइम पासिंग दोस्ती जिसको कहते हैं, और आप कहते हैं मेरी बड़ी गहरी दोस्त है, वो गहरी दोस्ती आपकी दुश्मन बन गई। वो गहरी सारी दोस्ती जहाँ पे रिश्तेदारियाँ दुश्मनियों में बदल जाए वहाँ पे दोस्ती क्या रह जाती है, यहाँ पे खून के रिश्ते वहाँ पे इंसान से कहेंगे, इंसान उनसे भागेगा, वो कहेंगे कि हमें अपनी नेकियां दे दो, वहाँ पे दोस्तियों का क्या ताल्लुक रह जाए। सिर्फ दोस्ती वहाँ पे भी कौन सी रहेगी जो अल्लाह के खातिर, वहाँ पे भी वो दोस्त एक दूसरे को देख के खुश होंगे जो अल्लाह की खातिर दोस्ती रखते थे दुनिया। तो अल्लाह ताला की खातिर जो मोहब्बत रखना है इसका दर्जा इतना बड़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक दफा पूछा, जानते हो कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है? तो सहाबा किराम ने, किसी ने कहा जिहाद, किसी ने कहा ज़कात, किसी ने कहा नमाज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल ये है कि अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की जाए, उसकी खातिर मोहब्बत की जाए और अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा किया जाए। अगर मैं किसी से नाराज भी हूँ तो इस वजह से ना कि अच्छा तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, अच्छा तुमने मेरी पार्टी पे नहीं आई थी, अच्छा तुमने मुझे दावत का कार्ड नहीं भेजा था, इस वजह से नहीं नाराज होती हूँ, नाराज भी अल्लाह की खातिर होती है, मेरी नाराजगी भी उसकी खातिर और मेरी दोस्ती भी उसकी खातिर, तभी इंसान की दोस्तियाँ खालिश होती हैं। मेरा गुस्सा किस लिए, किसी अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई बात हुई है जिसकी वजह से मेरा गुस्सा, मेरा गुस्सा अपनी अना की वजह से नहीं है, मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, ये है अल्लाह की खातिर गुस्सा करना और ये है अल्लाह की खातिर दोस्ती करना। कि हज़रत अली ने एक दफ़ा जब किसी के ऊपर तलवार उठाई थी किसी काफिर के ऊपर, तो उसने उनके ऊपर थूक दिया था, फौरन तलवार वापस रखी, क्या फरमाया था कि पहले मेरा गुस्सा अल्लाह की खातिर था, अब मैं अपनी खातिर अगर मारूंगा तो ये मेरा गुस्सा हो जाएगा, जब कोई थूकेगा तो जाहिर है इसमें मेरा गुस्सा शामिल होगा, तो मैं अपनी खातिर नहीं किसी को कत्ल करूँ, अल्लाह की खातिर है, लड़ना भी अल्लाह की खातिर, दुश्मनी भी अल्लाह की खातिर। वो लोग दुश्मनियाँ भी अल्लाह की खातिर करते थे, वरना आप देखें जब आप हिस्ट्री उनकी उठाते देखें तो उनकी कोई जाति तो किसी से बोझ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाति से किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी हो, कोई नफरत हो, नहीं। वो लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद करते थे, सादे पर अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें महबूब तरीन इंसान थे। कि जब हिजरे अस्वद रखा जाने लगा था तो सब में झगड़ा हो रहा था, तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो सबको तसल्ली हो गई कि अब ये आएंगे तो इंसाफ का मामला करेंगे सबके साथ। किसी को कोई दुश्मनी थी, वो दुश्मनी किस वजह से हुई? अल्लाह की खातिर थी। वो लड़ाइयाँ, वो जंगें किस वजह से हो रही थी? अल्लाह की खातिर थी ना। बाप और बेटा एक दूसरे के सामने तलवारें लेके क्यों खड़े हुए थे? उनकी आपस में जाती तो कोई दुश्मनी नहीं, ये अल्लाह की खातिर थी ना। एक सहाबी फरमाते हैं कि जब उन जंग के अंदर देखा कि वालिद जो उनके थे वो कुफार की तरफ से आए हुए थे, खुद मुसलमान हो चुके थे, तो किसी ने उनसे कहा कि अब तुम्हारे ईमान का इम्तिहान हो गया, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो कई दफा बाप के आमने सामने आए तो बाप बचा के चले गए, नई तलवार उठा। तो कहते हैं मेरे बाप जो है उस कुफर में कच्चा है, तो उसे मेरे पर तलवार नहीं उठा सका, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं अपने ईमान में कच्चा नहीं, मैं तलवार उठाऊंगा। और कई आपने वाकयात देखे कि बाप बेटे के हाथों कत्ल हुआ, भाई भाई के हाथों कत्ल हुआ। क्या चीज थी? ये थी अल्लाह की खातिर गुस्सा करना। हम अपनी अना के लिए तो बहुत गुस्से करते हैं, और अपनी अना की सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने मफाद के लिए तो बहुत दोस्तियां करते हैं। हमारी कितनी दोस्तियां सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए। हम अपने दोस्तों को छांटे और देखें कि इसके साथ मेरी दोस्ती किस लिए, उसके साथ किस लिए, आप देखेंगे दुनिया में भी वही दोस्ती पायदार है जो अल्लाह की खातिर, यकीन करें। बाकी दुनिया में ही वो दोस्त साथ छोड़ जाते हैं जो ज्यादा मफाद के लिए होते हैं ना, कभी किसी बात पे नाराजगी, कभी किसी बात के ऊपर वो ताना, कभी किसी बात के ऊपर ये, कोई किधर चला गया, कोई दूसरी जगह मूव हो गया, दोस्तियां खत्म। जब तक आप और मैं करीब करीब रहते हैं हमारी दोस्तियां फोन पर बात हो जाती है, उसके बाद क्या दोस्ती है? लेकिन जो दोस्ती अल्लाह की खातिर होगी वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जब दोस्ती इंसान अल्लाह की खातिर करना सीख जाए ना, तो वो भी फिर इंशाल्लाह वहां पे अल्लाह ताला के अर्श का साया पाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके अंदर कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, अपनी नीयतों को बस बदलने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान ना लाओ, और उस वक्त तक ईमान वाले नहीं होगे जब तक आपस में मोहब्बत ना करो, कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की खातिर हो जाए, आपस में दोस्तियां अल्लाह की खातिर हो जाए। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अल्लाह की खातिर, मुझे ये नहीं है कि आपसे मुझे कुछ मिलेगा, तब तक तो तुम जन्नत में ही नहीं दाखिल हो सकते, क्योंकि ईमान वाले ही नहीं हो सकते। ईमान वाले तब होगे जब एक दूसरे से अल्लाह की खातिर दोस्ती करोगे। तो जब भी आपको कोई भी बताए, एक तो ये कि उसको दुआ दे, जब आप उन रिटर्न उसको ये बात कहें कि अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करे, और अपने लिए भी हर वक्त ये दुआ मांगे जो मसनून दुआओं की किताब में भी आपको मिल जाएगी। दाऊद अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी कि वो दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बुका व हुब्बा मन युहिब्बुका, अल्लाह ताला मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और उसकी, हर उस इंसान की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत मांगते थे, यानी नेक लोगों की मोहब्बत, कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत हो जाए जो नेक है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह उन लोगों की मोहब्बत मुझे दे दे। वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और ऐसे अमल की मुझे तौफीक दे दे जो मुझे तेरी मोहब्बत दिलाए, और अल्लाह तेरी मोहब्बत मुझे इतनी महबूब हो जाए कि मेरी जान से, मेरे माल से, मेरे अहल अयाल से और ठंडे पानी से भी ज्यादा मुझे तेरी मोहब्बत अच्छी लगे। ये भी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, यानी दुआ में आप क्या मांग रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत और उन लोगों की मोहब्बत के ना, उनकी मेरे दिल में उन लोगों की मोहब्बत डाल दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी नहीं जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, या उनकी नहीं जो बड़े फैशनेबल है, या उनकी नहीं जो कोई बड़े स्टार है, कोई सेलिब्रिटीज है, या उनकी नहीं कोई जो कोई फिल्मी हीरो है, मुझे उनकी मोहब्बत डाल जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। और फिर अगला, उस इंसान को अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा जिसको कोई साहिब हैसियत औरत, जो हसीनो जमील औरत, उसको दावत गुनाह दे और वो उसको जवाब दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। आप देखें कि कोई ऐसी औरत अगर गुनाह की दावत देती है किसी इंसान आदमी को, तो मर्द के लिए बहुत कमजोर लम्हा होता है। उस वक्त ये कह देना कि नहीं, अब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें कि जुलेखा ने जब कहा था, अजीज मिस्र की बीवी थी, एक तो इतने बड़े आदमी की बीवी, और ये क्या हैसियत रखते हैं वहां पे, गुलाम की नौकर की हैसियत रखते हैं और वो मालिकन की हैसियत रखती है, एक तो स्टेटस में कितना फर्क था। ऊपर से ये कि औरत खुद गुनाह की दावत दे रही है, औरत खुद रजामंद है, तो क्या करते हैं, क्या किया अल्लाह से करते। एक सहाबी अमर सर, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए, तो कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का में रह गए और बहुत ही लाचार थे, मजबूर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा कि उनको छुड़ा के लेकर आए। तो जब ये गए तो उस वक्त एक दीवार फांदी इन्होंने, तो एक साया सा नजर आया, साये में गौर किया तो एक औरत थी, अनाफ उसका नाम था, और उसने कभी इनकी कुफर के जमाने में उसके साथ आशनाई थी। ये औरत वो थी जो जैसे जिसको आप कहेंगे कि प्रॉस्टिट्यूट कह लें या उस तरह से, तो उसने ही पहचान लिया और उसने कहा कि आओ मेरे साथ रात गुजारो आज। फरमाते हैं जिना जो है ना वो गुनाह है, जिना हराम है, मैं नहीं आ सकता। तो कह लिया अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको पता चलेगा, तो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। कहते हैं क्या था उस वक्त, क्या चीज रोक रही थी, औरत भी रजामंद है, रात है, कोई देखने वाला नहीं है, हा? और फिर ये कि पुरानी आशनाई भी है, वो खुद बुला रही है, क्या चीज रोक रही। एक अल्लाह का डर, इंसान कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये ठीक है, ये मर्दों के लिए तो है, लेकिन हम औरतों को भी जब अपनी नजरें घुमाने लगे तो उस वक्त ये याद रखें कि ये नजर और ये मेरी इज्जत जो है मेरे शौहर की अमानत है, और जब वो मौजूद नहीं भी है तो वो नहीं मुझे देख रहा मगर अल्लाह ताला मुझे देख रहा, उसके डर की वजह से मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करूँ, उसके डर की वजह से, उस रब के डर की वजह से, शौहर के नहीं, उसके डर की वजह से मैं अपनी निगाहों की हिफाजत करूँ, उसके डर की वजह से मैं अपने दिल को किसी के ऊपर भी गिरने से बचाऊं, कि अब मेरा दिल उसके ऊपर आ रहा है और फलां के ऊपर आ रहा है और फलां बड़ा अच्छा है और फलां बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मैं अपनी नजरों की हिफाजत करूं। नजरों की हिफाजत होगी तो दिल की हिफाजत होगी, इज्जत की हिफाजत होगी, लेकिन नजर जो है ना वो पहला दरवाजा है जो गुनाह की तरफ लेकर जाता है। जब नजर देखती है तो उसके बाद ही आगे से आगे ताल्लुकात चलते हैं। तो इसलिए औरतें भी, ये मर्दों के लिए बात है, औरतों के लिए तो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करें, और उनको किसी और के डर की वजह से नहीं, सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से करें। चाहे वो आप टीवी में देख लें, चाहे वो आप बाहर देख लें कि फलां है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, फलां है वो, ये क्या है, ये नजरों का जिना है, नजर का जिना है। तो उस वक्त देखें उस औरत ने जो अनाथ थी उसने शोर मचा दिया कि लोगों पकड़ो इसको, ये तुम्हारे कैदियों को ले जाने के लिए आए, और लोग शोर सुन के भागे और ये वहां से फरार हो गए। मगर बात बताने की आपको ये है, देखिए क्या चीज इंसान को रोकती, जब अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है ना, उसका डर आ जाता है, तो फिर इंसान कोई भी दावत गुनाह दे तो इंसान सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से रुक जाता है। अब देखिए मुझे तीन लोग बार के अंदर सब ने ये सुनी अभी के दीवार के अंदर, और जो पत्थर उसके नीचे आ गया था, वो हर एक ने दुआ करी थी कि या अल्लाह ताला मेरा कोई ये फला नेक अमल तुझे अगर पसंद आ गया तो अल्लाह ताला इसकी वजह से दीवार के आगे से जो पत्थर को हटा दे। तो एक आदमी की क्या बात थी कि फला औरत जो थी, जब मैंने उसको, वो उसकी रिश्तेदारी थी, जब मैंने उसको कहा उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ रात गुजारो तो मैं तुम्हें इतनी इतनी जो तुम्हारी हाजत है वो पूरी कर दूंगी। तो उस औरत के पास जब बैठने लगे, वो औरत आ चुकी है बैठने लगे, तो उस वक्त उसने कहा कि अल्लाह से डरो, और कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं उस वक्त तेरे से डर गया और उस वक्त मैं बाज आ गया। तो वो उन दो जो पहले जो लोग बोल रहे थे ना, उनकी वजह से गार के मुँह से पत्थर हटा, लेकिन अब गार के मुँह से इतना पत्थर हट गया कि वो तीनों बाहर निकल गए। ये बहुत अजर सवाब का बात है कि अगर आप अल्लाह के डर की वजह से अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये नहीं है कि अब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे हर किस्म की आज़ादी है, अब मुझे क्या, अब मैं तो औरत हूँ, मैं तो जिसको जहां मर्जी देखूं जैसे मर्जी देखूं, मर्द के काबिल सतर हिस्सों को देखूं या जैसे भी देखूं, अब उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शादीशुदा हो चुकी हूँ। जिस एज में भी आप हैं, आपको अपनी नजरों की हिफाजत करनी है, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। इसी तरह नंबर 6, वो इंसान जो कि इस तरह सदका करे कि दाएं हाथ से करे तो बाएं को पता ना चले, और फिर वो इसके अंदर रियाकारी की बात आ जाती है। तो मैंने आपको बताई कि इंसान चाहता है कि जब मैं सदका करूं तो बस ये कि लोगों को पता चले हमने कितना डोनेशन दिया है, हमने कितनी ये चीज़ दी है, और लोग सोचें कि वाह भाई वाह, ये तो बहुत कुछ देने वाली है अल्लाह के रास्ते में। मगर इतना छुपा के दो, देखिए बायां हाथ दाएं हाथ के साथ है ना, कितना करीब है, एक ही जिस्म के हिस्से, लेकिन कितनी प्यारी मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाएं हाथ को पता ना चले जो दाएं हाथ में दिया, इतने करीब के भी बंदे को ना पता चले कि आपने सदका किया। हमारे तो हर तरफ हो रहा, तो जब उसने प्लान इतना डोनेशन दिया, लोग अखबारों में तस्वीरें छपवाते हैं, अखबारों में दे रहे होते हैं, और वो जो हाथ मिला रहे हैं और तस्वीर है वहां पे, इसने इतने लाख दिए, इसने इतने हजार दिए, पर हम चाहते हैं हमारी खुदनुमाई हो, मैगजीन के अंदर हमारे नाम आए, या हमें कोई इसके ऊपर अवार्ड दिया जाए कि ये सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले थे इस साल के। जहाँ ये कहा गया इतना छुपा के दो, वहाँ हमारे क्या हालात है। और जब देखिए हमने सदका दे दिया और उसके अंदर अगर रियाकारी आ गई, तो सदका जाया, आपके पैसे भी जाया गए, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, आपके पैसे तो जाया, आपने जो सदका दिया था वो चला गया, खत्म हो गया, उड़ गया खाक बन। तो सदका दे, एक तो सदका देने का बहुत अजर है। देखो सुबह को दो फरिश्ते, हदीस में आता है कि दो फरिश्ते सुबह को ये आवाज लगाते हैं, एक कहते हैं कि या अल्लाह जो खर्च करने वाला है उसके माल को में बरकत दे, उसको इसका बदल दे, और दूसरा कहता है कि या अल्लाह जो बखील है, जो रोकने वाला है, उसके माल को बर्बाद कर दे। तो सुबह ही अगर आप खर्च करने वाले हैं तो आप उनमें शामिल हो गए कि फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको तो किसी और की उसकी जरूरत ही नहीं है। कई लोग लिख देते नीचे ये सारी मैंने छुपाई है, अब इसके बाद इसके लिए दुआ करें, और अपने नाम नीचे लिख दें। कई होगा कि उसने वो अल्लाह के ये नामों का वो छपाया है, तो उसके नीचे अपने फला इलेक्ट्रॉनिक दुकान और ये मन जाने फला फ्रॉम दिस, ये क्या है। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तो आप यही बस कह दो कि जिस जिसने या अल्लाह इस काम के अंदर हिस्सा डाला उन सबको इसका अजर मिले। तो क्या अल्लाह नहीं जानता, जरूरी है कि आप लोगों से ही करवा रहे हो, जब आपके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला उस सदके को जो छुपा के किया गया है उसको अल्लाह ताला इतना बढ़ाते हैं कि एक खजूर को ओहद पहाड़ जितना बराबर कर देंगे उस दिन कयामत के दिन। इंसान को इतना बड़ा, इतना तो मैंने सदका किया नहीं था, ये एक खजूर है जो अल्लाह ताला ने पाल पाल के, जैसे आप अपने घोड़े के बच्चे को पालते हैं, एक इंसान पालता है घोड़े के बच्चे को प्यार से, इस तरह हदीस में आता है अल्लाह ताला पाल के उसको इतना बड़ा कर देंगे। तो उस रब से तुम समझते हो कि वो नहीं अजर देगा, और इनकी दुआ चाहिए और इनकी दुआ चाहिए, अब इनको मैं अपना नाम लिख के दूंगी, देखें जी मैंने ये डोनेशन दिया, अब आप ना मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरा ये नाम। तो जिसने भी इसके लिए किया, जिसने भी, अब वो आप भी शायद उसके अंदर शामिल, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरे लिए करो भाई, जब वो कहेगा जिसने भी इसका काम कार्य खार को किया उन सबको अजर मिले, तो आप भी तो शामिल हो गए। तो अपना जितना भी सदका है उसको कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके छुपा के करें। हाँ, जाहिर करना तब है जबकि आप दूसरे को तरगीब देना चाहते हैं कि दूसरा भी इसको दे के करें, मगर लाजमी पकड़ें कि कोई कुछ ना कुछ सदका जरूर ऐसा होना चाहिए जो आप छुपा के करें, क्योंकि जब आप जाहिर करके करते हैं तो आप कहते तो हैं कि हाँ भाई ठीक है आपको भी मुझसे तरगीब मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ये भी दिमाग में ले आता है कि हाँ देखो लोगों को भी तो पता चलेगा, अब मैंने देने तो $2 थे लेकिन मैंने इसलिए 20 दिए, 2 को 20 इसलिए बनाया कि अगर 2 दूंगी तो ये सारे कहेंगे ये $2 सिर्फ दे रहे हैं, तो मैंने जो वो $18 दिए वो कहाँ गए, वो तो सिर्फ लोगों की खातिर थे, वो अल्लाह की खातिर तो नहीं थी, उसमें तो रियाकारी आ गई, तो इसमें बहुत चांस होता है रियाकारी, इसलिए इससे बचना जरूरी है। हाँ, आप समझते हैं कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी खालिस है और मैं बिल्कुल इससे बच जाऊंगी, बहुत मुश्किल है कि शैतान किसी को छोड़ दे इस तरह, लेकिन अगर आप समझते हैं इस तरह से आप तरगीब बाकी दिलाना चाहते हैं तो ठीक है आप दे, लेकिन छुपा हुआ सदका जरूर करें। और देखिये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये कसम है रब्बे काबा की, वो बड़े खसारे में, काबा के पास बैठे हुए थे तो आपने फरमाया बड़े खसारे में, वो बड़े नुकसान में। तो हजरत अबू जर करीब थे, तो फरमाया कौन या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, कौन है बड़े खसारे में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माल को ज्यादा जमा करने वाले, अनलेस के वो राइट लेफ्ट आगे पीछे खर्च करें तब वो बच सकते हैं। वरना जो बहुत जमा करने वाले, हम कहते हैं फलाने भी इतना जमा कर दिया, फलाने भी कर लिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जमा पूंजी। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिसने जितना जमा किया है, जितनी है उसके पास ज्यादा नियमतों की ढेरियां हैं, जितनी ज्यादा नियमतें, जितना ज्यादा बैंक बैलेंस है, उतना हिसाब किताब भी तो ज्यादा है, उतना एक एक डॉलर का भी तो सवाल उससे ज्यादा होगा। ये क्यों भूल जाते हैं? हम कितनी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं ना, फलाने इतने बना लिए, फलाने के पास इतने मिलियन हो गए, फलाने इतने मिलियन का ये ले लिया, हम पीछे रह गए, हाय हम पीछे रह गए। क्यों हम करते हैं इसका सवाल देखो कितना। आपको दिल चाहता है कि आपका पेपर, टेस्ट पेपर आपके लंबा हो? अब मैं आपको कह दूं कि आज के पेपर के अंदर आपको 10 नहीं, आज से आपको 50 आयतें दी जाएंगी और अल्फाज भी ज्यादा हो जाएंगे और रूट वर्ड भी आपको दिए जाएंगे, तो सब शोर मचाने शुरू देंगे, हाय ज्यादा क्यों कर दिए क्वेश्चन। सब घबराते हैं कि टेस्ट हमारा लंबा ना ले, छोटे से छोटा ले। लेकिन जब आमालनामे की बात आती है, नियमतों के सवाल की बात आती है, तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारा आमालनामा बढ़ता ही जाए? हमें नियमते और नियमते, जितनी नियमतों के सवाल उतने ज्यादा होंगे। कम है तो शुक्र इस पे भी अदा करो, इसलिए कि सवाल कम होंगे आपसे, आपका हिसाब किताब आसान होगा, जल्दी जल्दी वहां से चले जाएंगे। गरीब जो है, जो इस उम्मत के गरीब है, वो 500 साल पहले चले जाएंगे जन्नत में अमीरों से, और क्या चाहिए वहां पे? तो यहाँ पे एक एक दिन एक एक वक्त काटना मुश्किल होगा, हमें 500 साल पहले वो जन्नत में बैठे होंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आखिर में मेरे पास जन्नत में आते, जन्नत की बशारत मिल चुकी है, दुनिया में ही खुशखबरी मिल चुकी है, लेकिन क्या किस वजह से बहुत परेशान हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे माल की कसरत ने तुम्हें रोके रखा, क्योंकि माल का हिसाब किताब देने में, हिसाब किताब देने में, देखिए हिसाब किताब, उनके तो माल हलाल के थे, ये सहाबी रसूल हैं, ये वो हैं जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल चुकी है, अभी फौत नहीं हुए, अभी दुनिया से गए नहीं है, अल्लाह ताला ने पहले बता दिया ये जन्नत में जाएंगे, इनका माल हलाल, और फिर इतना अल्लाह के रास्ते में देते थे कि जब इनको ये पता चला था ना कि मेरे बारे में ये बशारत आई है, तो इनका पूरा काफिला जो सामान से भरा पड़ा था, लदा हुआ था, तो सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया इस खुशी में, ये बशारत नहीं दिया मुझे। तो वो लोग थे, तो फिर उनको माल की कसरत की वजह से सवाल जवाब कितने आएंगे, तो जिसकी वजह से इनको खड़े रहना पड़ा। तो हमारे कितने सूटों के, कितने जूतों के, कितने हमारे मेकअप के सामान के, कितने हमारे ज्वेलरी के, कितने कुछ चीजों के हमें सवाल जवाब है, कितने खाने के हमारे फ्रिज में पड़े हैं, किस किस चीज का हम जवाब देंगे? तो इसकी इस हबिस में ना पड़े कि और मिले और मिले और मिले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, देने से माल कभी नहीं घटता। ये तो हदीस में आया है कि याद रखो, ये तो आप अल्लाह ने कसम खा के फरमाया कि सदका करने से माल घटेगा। अब अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन है, जिनको काफिर कहते थे कि ये सच्ची है, तो फिर क्यों फिक्र करते हैं? माल कभी नहीं घटता, क्यों दिल तंग हो जाता है? शैतान कहता है फकर फाके का डर देता है, अगर तुमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया तो तुम्हारा अपना क्या रहेगा? अभी वो देखो तुमने ये भी अपनी जरूरत पूरी करनी है, अभी ये भी जरूरत पूरी करनी है, क्योंकि शैतान है जो फकर का डर देता है, मोहताजी का डर देता है। अल्लाह के रास्ते में देखो कभी कभी नहीं जाएगी, अल्लाह ताला कई गुना करके इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में से बदतरीन इंसान वो है जिससे अल्लाह के नाम पे मांगा जाए और वो इनकार करते कि मैंने नहीं देखा। तो एक सहाबियत ने मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कभी कभी कोई मस्कीन आता है तो मुझे, मेरे पास कुछ होता ही नहीं देने को, लोग खुद भी तो बस मतलब गरीब थे, ऐसे तो नहीं थे कि बहुत उनके पास नहीं, कहते मेरे पास कुछ नहीं होता, तो फिर मैं क्या किया करूँ? बहुत शर्मिंदगी होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जला हुआ खुर भी तुम्हारे पास है ना, वो भी दे दो, कि कोई तुमसे अल्लाह के नाम पे मांगे तो खाली हाथ ना लौटा। अब हम कहते हैं कई दफा फकीर मांगते हैं ना, तो हम तंग आते हैं कि अब इसको देंगे तो गदागरी बढ़ेगी, लोग ज्यादा फकीर बन जाएंगे और इस तरह इन्होंने धंधा बना लिया। तो उस वक्त आप अपने पास चेंज रखें, ऐसा रखें कि बस आपने देना जरूर है, इनकार नहीं करना। या अपने साथ खाना घर से ले लिया, खाना बैग में डाल लिया, अब आपने उसको खाली नहीं लौटाना, मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। अल्लाह के नाम पे जो मांगे, हर वो हमेशा ये कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे ही दे दे, तो हम कहते हैं नहीं जाओ जाओ। अच्छा कुछ भी नहीं दे सकते आप, तो भली बात ही कह रहे, वो भी सदका, मगर छिड़को नहीं। चल चल फलां और फलां, तुम लोगों ने तो यही काम बना, ये नहीं करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरते वक्त खैरात करे या गुलाम आजाद करे, जब इंसान सोचता है ना कि अभी तो मेरी मेरी अपनी इतनी जरूरियात है, जब मरने लगता है तो उस वक्त जाकर कहता है कि अच्छा फलां को अब इतना दे दो, अब पता है कि बिल्कुल अल्लाह माफ करे कोई बीमारी ऐसी डायग्नोज हो गई है कि अब उसने कह दिया कि आप 4 महीने जिंदा रहेंगे, अच्छा चलो अब फलां को दे दो इतना, फलां को इतना कर दो, या बिल्कुल लेड़ियां रगड़ रहे हैं डेथ बेड पे, तो अच्छा फलां फलां मस्जिद को दे दो फलां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मरते वक्त खैरात करे या गुलाम आजाद करे, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई शख्स किसी को तोहफे के तौर पे उस वक्त खाना भेजे जब उसका पेट भरा हो। ठीक है, उस वक्त सदका तो आपने किया, अगर उसका वो अजर नहीं, आपने उस वक्त दिया है जब आप बिल्कुल अगले जहान में जाने वाले हैं, वहां पे कोई काम का नहीं रहेगा, तो आपने कहा बेहतरीन सदका रद्द, और आपकी अपनी भी जरूरत है लेकिन आप फिर भी अल्लाह के रास्ते में देते हैं, ये है बेहतरीन। तो हर एक इंसान के ऊपर सदका वाजिब है, अगर आप नहीं भी कमाती, हम खवातीन तब भी हम अपनी पॉकेट मनी में से, या जो आपकी सेविंग है, या आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा कि किसी के पास सदका करने को कुछ हो ही ना तो वो क्या करे, किसी का ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हाथ से कमाई करो, खुद भी फायदा उठाओ और सदका भी करो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। अगर आपको कुछ खाना बनाना आता है, कोई केटरिंग कर रहे हैं, कुछ सिलाई आती है, कुछ सिलाई करते दे, बेबी सिटिंग कर, कुछ ना कुछ ऐसा अपने हाथ से काम करें कि आपकी सदका निकाले। अगर आपको हस्बैंड की तरफ से इजाजत नहीं है या आपको पास पैसे हैं ही नहीं है ऐसा पर, लेकिन सदका करने के लिए फिर आप मेहनत करें और उसमें से सदका निकालें। लेकिन करना सदका हर एक के ऊपर जरूरी है, कोई इससे वो नहीं है कि हम बहुत गरीब हैं तो हम तो लेने ही वाले हैं, हम तो देंगे नहीं। और फिर आखिरी वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तो वो इंसान अल्लाह ताला के अर्श पर छाया पाए। लेकिन कभी कभी हमारी महफिल में बैठे हुए या कोई बात सुनते तो आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन अकेले में, क्योंकि उसमें भी फिर बात सारी बातों की बात हुई है कि रियाकारी आ सकती है, लेकिन जहाँ तन्हा बैठे हुए और सिर्फ अल्लाह को याद करके या अपने गुनाहों को याद करके इंसान की आंखों से आंसू निकल आए, तो इस इंसान को भी अल्लाह ताला के अर्श पर छाया ना मिले, क्योंकि बगैर हिसाब किताब के जो इंसान जाएंगे ना जन्नत के अंदर, उनके अंदर ऐसी सिफात होंगी कि वो अल्लाह ताला से डरने वाले थे तन्हाई में भी और लोगों के सामने, उनको नहीं फर्क पड़ता था कि मैं अकेली हूँ, अब मुझे क्या खौफ, अब मुझे कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ताला को दो कतरे ना बहुत पसंद है, बहुत महबूब है, एक वो खून का कतरा जो शहीद के या जिहाद करने वाले के जिस्म से निकल, और एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता। तो ऐसे ये कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इसलिए जब तन्हा बैठे तो इंसान की एक सख्त दिल होने की ये भी अलामत है, निशानियों में से ये भी है, ये पता चलेगा कि आपका दिल मुर्दा तो नहीं हो गया, डेड तो नहीं हो गया, सख्त तो नहीं हो गया, उसकी एक ये भी अलामत है कि तन्हा भी इंसान बैठे, अकेला भी इंसान बैठे तब भी उसको अल्लाह याद ना आए। अगर आप अकेले बैठी हुई हैं, कोई आपको धंधा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिर भी आपको अगर रब याद नहीं आ रहा ना, तो समझ लें कि दिल सख्त हो गया। तब भी अगर आपको यही याद है कि खाना क्या बनाना है और किससे क्या मिलना है और किसके घर जाना है और मैंने क्या आज सूट पहनूं और ईद के लिए क्या बना रही हूँ, अगर फिर भी आपको यही काम याद आते या फ्यूचर प्लानिंग याद आती, हमें तो देख सकते हैं, ये भी दिल की नरमी की अलामत है कि इंसान अकेला बैठा हो तो उसको अल्लाह ताला उस वक्त याद आए। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से ये करें, अगर खुद ब खुद नहीं भी होता कोशिश किया करें, क्योंकि आप देखेंगे कि अल्लाह की खातिर रोने में जो लज्जत है ना, जब आंखें अल्लाह की खातिर रोती हैं ना, तो उस आंसू को निकालने में जो मजा है किसी और की। आप फिल्में देख के रोते होंगे, ड्रामे देख के रोते होंगे, किसी की मिजरी देख के रोते होंगे, लेकिन इस तरह रो के कभी देखा अपने लिए? इसकी मैं आपको एक यानी वो तरीका बताती हूँ कि अपने लिए ایسے وقت کے اندر آپ تنہائی کے وقت میں ہو تو آپ دیکھیں گے کون سی چیز آپ کو نرم کرتی ہے دل کو. اگر آپ تلاوت سن کے قرآن کی تلاوت سن کے آپ کا دل نرم ہوتا ہے, یا کوئی ایسی آیات ہے یا کوئی ایسا واعظ ہے یا کسی کا کوئی ایسا بیان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سن کے میرا دل نرم ہوتا ہے, تو وہ لگا لیا کریں, وہ سن لیا کریں, یا قرآن کی تلاوت سن لیں, یا کوئی آپ ترجمہ پڑھنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دل نرم ہوتا ہے تو اکیلے میں کوشش سے کریں. یہ نہیں کہ بائی چانس کبھی کوئی ہو گیا تو ہو گیا ایسا انسیڈنٹ, نہیں, آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں میں اللہ کی یاد میں روئی نہیں, میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا. اپنے دکھوں غموں پہ تو سارے ہی روتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد میں اگر انسان نہ رویا تو یہ آنکھیں کسی قابل نہیں. جیسے ایک صحابی تھے نا, تو وہ اتنا روتے تھے تو ان کی آنکھیں خراب ہونے لگی, تو حکیم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ رونا بند کر دیں, روئیں گے نہیں نا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. انہوں نے فرمایا کہ وہ آنکھ ہی کیا جو رب کی یاد میں نہ رہے, تو وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کو یاد کرتی نہ رہے. کبھی سوچا ہے اپنی آخرت کا سوچیں, اگر آپ کو اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہیں, اگر آپ کا دل نرم کرتی ہیں, تو اکیلے بیٹھے ہوں سوچا کریں کہ میرے جب میں مروں گی تو پھر یہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, وہ نہیں, میں مروں گی تو میرے کیا حساب کتاب ہوگا, اللہ میرے ساتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو معاملہ کرے گا, یا اللہ جب میں حشر کے میدان میں ہوں گی اس وقت میرے ساتھ پتہ نہیں کیا گزر رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ ابھی میں پچھلے دنوں میرے گھر میں سپگیٹی پڑی ہوئی تھی, تو ابھی پچھلے دنوں بڑی گرمی تھی نا تو وہ خراب ہو گئی, رات کو باہر پڑے ہم بھول گئے, تو اگلے دن جب میں اس کو نکالنے لگی تو اس کا رنگ بھی عجیب سا بدل گیا تھا اور بدبو سی بھی بہت آ رہی, تو اتنی وہ گدی سی ہو گئی تھی کہ جب میں اس کو نکال کر پھینکی تو وہ اس کی وجہ سے مجھے کراہٹ ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ دیکھو یہ اگر مجھے کوئی کھانے کو کہے تو میں کھاؤں گی, کبھی بھی نہیں, اتنی اسمیل بھی تھی اور اس کا کلر بھی جیسے فنگس سا لگ گیا ہو, جیسے عجیب سا ہو گیا, اس کی سوس عجیب ہو گئی. تو میں نے کہا اللہ اکبر, جو جہنم کا کھانا ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کو اس کی بدبو اور اس کو نگلنا اتنا سخت مشکل ہوگا, اور جب وہ اندر جائے گا تو انسان کی آنتوں کو کاٹ دے گا, اور اس کی آنتیں جو ہیں وہ اس کی پخانے کے راستے نکل جائیں گی, پھر بھی انسان اس کو کھائے گا بھوک کی وجہ سے. تو یا اللہ وہ کھانا کیسا ہوگا اگر آج میں اس کھانے کو دیکھ کے کراہت کر رہی ہوں اور مجھے اس کی بدبو بری لگ رہی ہے, اس کھانے کو کوئی مجھے کہے کھانے کے لیے تو مجھ سے کھایا نہیں جا سکتا, میں کہوں گی میں بھوکی رہ جاؤں گی, یہ نہیں کھاتی. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک دنیا کا روٹن کھانا ہے, میں آج یہ نہیں کھا سکتی, کیا میں اس کے لیے تیار ہوں کھانے کے لیے, کیا میں اس کو نگلنے کے لیے تیار ہوں. اس کی باتوں کو سوچا کریں, اپنے دل کو نرم کریں, آخرت کو سوچیں, اللہ تعالیٰ کے دیدار کو سوچا کریں کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تیرا دیدار ملے گا بھی یا نہیں, یا اللہ میرے اعمال نامے میں کچھ رہ گیا یا نہیں, اللہ پتہ نہیں میرا جو عمل ہے وہ تو ہی جانتا ہے, میں تو جانتی نہیں ہوں اس میں کوئی نیکیاں ہیں بھی یا نہیں, یا میں لمحے بھر میں اپنا سب کچھ گنوا چکی ہوں, میں لٹ گئی. میں کہتی ہوں انسان کی یہاں پہ کوئی کسی کے زیور, یا وہ کہتے ہیں نا وہ ڈاکو آئے اور انہوں نے وہ گن پوائنٹ کے اوپر سارے زیور اتروا لیا, اس طرح کا, تو پھر عورتیں اتنی غمگین ہوتی ہیں, اتنی غمزدہ ہوتی ہیں کہ ہائے ہماری تو اتنی محنت کی کمائی تھی اور پل بھر کے اندر سارا چھین کے لے گئے اور اس طرح کر گئے, اور اتنا ان کو دکھ ہوتا ہے. یہ تو صرف زیور تھا, اور اگر ہمارا اعمال نامے میں سے ہماری نیکیاں ساری لٹ گئی ہوں, ہم چوری ہو گئی ہوں, ڈاکے ڈل گئے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اور ہم دنیا میں خوش خوش پھر رہے ہیں, دعوتیں کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں, فن کر رہے ہیں, اور آج مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ ہائے کہیں آج میں لٹ تو نہیں گئی, میری نیکیاں ساری بہ تو نہیں گئی, کہیں آج میں نے جو ریاکاری کی تھی اس کی وجہ سارے میرے اعمال نامے میں سے سب کچھ میرا ختم تو نہیں ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہ ہو, میں جانتی ہی نہ ہوں, اور میں بڑے بھروسے سے پھر رہی ہوں کہ میں تو بڑی نیکیوں کے کام کر رہی ہوں, اور لوگ بھی کہہ کے واہ واہ کر رہے ہوں کہ آپ تو بہت درس دیتے ہیں, آپ تو بہت یہ, اور آپ کو تو بہت, آپ تو وہاں پہ ہوں صحیح ہوں, اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا گنوا چکی ہوں. تو ہر وقت اپنی اس چیز کے اوپر نظر رکھیں, اور یہ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جب میں مرنے لگوں تو میرے زبان سے کلمہ جاری کر دینا, اللہ ایمان پہ میرا خاتمہ ہو جائے, یا اللہ میری موت ایسی حال میں آئے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوں اس وقت, اور میری زبان پہ آسان کر دینا, اپنی موت کے وقت کو سوچا کریں. تو جس طرح سے بھی آپ کو ہو کہ جس ذریعے سے بھی آپ کا دل نرم ہوتا, कोशिश से अपने आप को तनहाई में, अकेले में, स्पेशली जब घर में कोई भी नहीं हो, तो बजाय इधर उधर कोई चीज देखने के या फोन उठाने के, बैठ जाया करेंगे थोड़ी देर के लिए और अपने आप पे गौर व फिक्र किया करें, अपनी हालत पे गौर व फिक्र किया करें, अपने आगे के जो आप अमल भेज रही हैं उन पे गौर व फिक्र किया करें, अपनी आने वाली जिंदगी को देखें कि इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने अमालनामे में नेकियों को बढ़ा सकूँ, कौन कौन से जरिए हैं नेकी करने के कि मैं वहां वहां से समेट लूँ नेकियां, पता नहीं कब वक्त आ जाए, कब कब फरिश्ता आ जाए। तो इस तरह से करके आप जब इंशाल्लाह कोशिश से करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज का इंतजार करते रहेंगे कि कभी कोई ऐसा हादसा होगा कि मैं बैठी हूँ तो अचानक से ऐसे कोई ख्याल आ जाएगा तो फिर ही होगा, तो फिर नहीं, ये तो वन सवाल की बात है, मगर बात ये कोशिश से करें। हर हफ्ता मसलन आप सोचें कि अगर इस हफ्ते में मैंने अपने रब को नहीं याद किया, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, तो क्यों नहीं निकले, निकलने चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंसुओं के ऊपर अल्लाह ताला तरस खाएंगे। ये जैसे हदीस में है कि एक मक्खी के सर के बराबर भी आंख में अगर आंसू आ जाए, एक मक्खी के सर के बराबर, तो उस पे भी अल्लाह ताला इंसान की बख्शिश कर दे। तो आंसुओं की लड़ियां नहीं भी बह रही तो कम अज कम इतना ही आंसू निकाल लें कि अपने रब के सामने एक फरियादी बन के, एक फकीर बन के, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह मैं खाली हाथ तेरे आगे आ गया, पर तू गनी है, तू बादशाह है, मैं फकीर हूँ। एक बादशाह जैसे फकीर के साथ करेगा, अल्लाह ऐसा ही मामला तू मेरे साथ कर, मैं खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ खाली, मैं कुछ भी नहीं लेकर आ रही तेरे, अल्लाह ताला तू इन खाली हाथों की लाज रखे, मेरे साथ यही मामला करना जो एक बादशाहों का बादशाह, एक शहनशाह करेगा किसी फकीर के साथ। तो अल्लाह पता नहीं मैं अपने अमल तो गंवा चुकी हूँ, है भी या नहीं है मेरे पास, मुझे पता नहीं है मेरे अमालनामे में क्या है, मगर मैं तो ये समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं लेकर आ रही, पर अब मैं कुछ भी नहीं लेकर आई तो अब एक फकीर को तू कैसे नवाजेगा, अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक नवाजना मुझे। ऐसे करके अल्लाह तला से दुआ मांगे, हर अल्लाह तला ने फरमाया तुम दुआ किया करो और रो रो के दुआएं करो, अगर रोना नहीं आता तो रोनी शक्ल ही बना लो, लेकिन अल्लाह से मांगो, रो के मांगो। क्या हम सबको मांगने की जरूरत नहीं, क्या हमारे दामन भरे हैं, हमारे पास सब कुछ है, नहीं, हम खाली हाथ हैं। अपने आप को फकीर समझ के अल्लाह ताला के हजूर पेश हो, उसके दरबार में पेश हो और दुआएं करें अल्लाह ताला से, तो जब आप रो रो के दुआएं करेंगे आपको मगफिरत भी मिलेगी, आपके दिल भी धुलेंगे, दिल साफ भी होंगे, अल्लाह ताला को रहम भी आएगा आपके ऊपर, अल्लाह ताला की तरफ से माफी भी मिलेगी और उस दिन अर्श का साया मिलेगा। तो ये बंदा दुनिया में इसकी आंख में आंसू आया था किस वजह से, अपनी मुसीबत की वजह से नहीं, अपनी किसी तकलीफ की वजह से नहीं रोया था, ये सिर्फ इसलिए रोया था कि इसको मैं याद आ गया था, ये इसलिए रोया था कि इसको अपने गुनाह याद आ गए। तो इन आंखों को रोने की भी आदत डालो, ये आंखें जो पथरा गई हैं, जिनको नहीं रोना आता, इनको रोने की आदत डालो, दिलों को नरम करो, और जब दिल नरम होते हैं तभी आंख से आंसू बहता है, जब दिल सख्त हो जाए तो आंखें भी पथरा जाती हैं, और ये बदबख्ती की अलामत है, इंसान की बदकिस्मती की अलामत है कि उसको रोना ना आए। तो इसलिए ये तो तहे दिल के साथ अपने रब के हुजूर इखलास की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे, हमें सब किस्म की रियाकारियों से बचाना, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाना, या अल्लाह जो जो हम अमल कर रहे हैं ये टूटे फूटे जो अमल कर रहे हैं, या अल्लाह ताला इनको कई गुना बढ़ा के हमारे अमाल नामे में शामिल फरमा देना, और ऐ अल्लाह ताला हमसे कहीं कोई तकब्बुर हो गया हो, कोई अपनी बड़ाई की बात हो गई हो, कोई रयाकारी हो गई हो, अल्लाह ताला तो उसको माफ फरमा देना, हमें पता नहीं चलता हम मुंह से क्या बोल जाते हैं, अल्लाह हमें पता नहीं चलता अगर हमने कभी कोई दिखावा ना कर दिया, या अल्लाह हमें पता नहीं है हमने हमारे कितने नेक अमल शायद जो छोटे मोटे हमने किए हैं वो भी धुल गए हो, और हम साफ अपना अमल नामा लेकर और गुनाहों से भरा हुआ तेरे सामने आ गए, अल्लाह हमें नहीं मालूम, तो इस दुनिया में हमारी मगफरत कर देना, हम नहीं सही हो रहे तो अल्लाह तुम्हें हमें इस दुनिया में ही हमें रियलाइज हो जाए, हम इस दुनिया में सही हो जाए, हम अपने आप को सही कर लें, हमारी इसलाह कर देना, लेकिन नरमी से कर देना, अल्लाह ताला हमारे पर सख्ती भी ना करना, अल्लाह ताला अगर सख्ती से हमारी पकड़ करें, इसलाह करें, तो वो भी नहीं हम सह सकते, अल्लाह नरमी से हमें अपने रास्ते की तरफ ले आना, नरमी से हमें मोड़ देना, हमारे दिलों को फेर देना, इन दिलों को अल्लाह नरम कर दे, इनकी सख्ती दूर कर दे, पता नहीं हम कब अल्लाह ताला की फरमाबरदार बनेंगे, अगर इस उम्र में भी नहीं बने, अगर इस उम्र में भी हमारे अंदर इताअत गुजारी नहीं आई तो कब आएगी, किस दिन का हम इंतजार करें, मरने का, जब फरिश्ता आ जाए तो अब हम कहेंगे कि अब हम ठीक होते, नहीं, अभी से अपना इंतजाम करो, अभी से अपने लिए सब भलाइयां समेटने की कोशिश में लगे रहो, گناہوں سے دور رہو. کئی گناہ بھی ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, جیسے حسد ایک گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے, ایسے گناہوں سے بھی دور رہو. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچانا, ہمارے نفس کے شر سے بچانا. تو پھر شیطان دلوں میں آ کے یہ باتیں ڈالتا ہے کہ ہاں اب یہ بات بول, ہاں اب یہ بڑائی کی بات بولو, ہاں تم بہت بڑی ہو گئی ہو, تم بڑی بن گئی ہو. نہیں, اللہ ہمیں ان سے بچانا. اللہ بڑا تو ہی ہے, تیری ذات بڑی ہے, باقی کوئی بڑا نہیں. ہم فقیر ہے, تو غنی ہے, تو بادشاہ ہے. تو اس چیز کو لے کر اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنے اور جو کلاس کے بھی لوگ ہیں, اپنے اور مسلمان بہن بھائی بھی ہیں, اپنے رشتے دار بھی ہیں, دوست احباب بھی ہیں, سب کے بھی خلوص دل کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے, کسی کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہماری بھی بخشش فرما دے, اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو جو بے روزگار ہے سب کو رزق حلال عطا فرما دے, اور کشادہ رزق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ دینا, کبھی نیچے والا ہاتھ نہ دینا. ایسا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سات قسم کے لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ ان چیز ساری خوبیاں ہی ہمارے اندر آ جائیں, کوئی ایک نہیں, اللہ تعالیٰ ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں چلنے والا بنا دے. کوئی غیر مسنون کام نہ ہم کریں, کوئی غیر شرعی کام ہم سے نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہی کام ہمارے ہاتھوں سے لینا جو سنت کے مطابق, اللہ تعالیٰ وہی کام ہم سے لینا جو تجھے راضی کرنے والا ہو, اللہ وہی کام ہم سے لینا جو خلوص نیت کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بھی بچائے, بڑائی سے بھی بچائے, بڑے بول سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ محفل اپنے گھر میں رکھی, اللہ تعالیٰ اجر عظیم ان کو عطا فرمائے, اور ہم سب نے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمانا, اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا, عمل کرنا آسان فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.